एमा सुबह उठी। उठते ही उसने बाथरूम में किसी के उल्टियां करने की आवाज़ सुनी। घर में उसके और निक के अलावा और कोई नहीं था। वो दौड़कर बाथरूम की ओर गई। एमा ने घबराते हुए पूछा, निक तुम ठीक तो हो ना? मैं अंदर आ सकती हूँ? तुम्हें वॉमिटिंग हो रही है ना? निक ने धीरे से जवाब दिया, हाँ। एमा बाथरूम में आकर बोली, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें किसी भी फूड आइटम से एलर्जी नहीं है, तो फिर कैसे? इतनी वॉमिटिंग तो तुम्हें तभी होती है जब तुम ड्रिंक करते हो। कहीं तुमने... शट अप, मैंने ड्रिंक नहीं की, मेरी ऐसी हालत उस लड़की की वजह से हो रही है। लेकिन तुम उससे कब मिले? उसने तुम्हें नॉनवेज खिला दिया था जिसकी वजह से तुम्हें... निक की हालत थोड़ी सामान्य हुई। उसने मुंह धोते हुए कहा, यार वो लड़की साइको है, उसी ने मेरे और प्रियल के डिवोर्स पेपर सबमिट किए थे। आई थिंक आगे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होगी। एमा गुस्से में बोली, व्हाट द हेल, मुझे साइको लड़की पर इतना गुस्सा आ रहा है? निक ने कहा, काम डाउन यार, पहले तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन तुम्हें नहीं पता लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं है, ऐसे में हम उसे कुछ बोल भी नहीं सकते। अरे पागल है तो उसे मेंटल असाइलम में रखो ना और प्रॉपर ट्रीटमेंट कराओ, ऐसे खुले में क्यों छोड़ रखा है? निक ने कहा, ऐसे लोगों को गुस्से से नहीं ट्रीटमेंट से हैंडल किया जाता है, इन्हें प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है। लड़की के बाबा ने अपने लाड प्यार में उसकी हेल्थ को इग्नोर किया और उसे असाइलम भेजने के बजाय अपने पास रखा, बस यही वजह है कि आज उसकी ये हालत हो गई। सुबह पता लगाने उसके घर पर गया तो मुझे पता चला कि वो मुझे लेकर ऑब्सेस्ड है। उसके बाबा अभी तक घर पर नहीं थे, उसने मुझे ज़बरदस्ती... एमा बीच में बोली, ओ तो उसने तुम्हें किस किया और इस वजह से तुम्हें वॉमिटिंग हो रही है? फिर वो हंसते हुए बोली, ओह माय गॉड, यहाँ पर जीन और प्रियल को होना चाहिए था। निक ने कहा, हाँ, ताकि पूरा सच सुने बिना ही प्रियल मेरे पीछे मुझे मारने के लिए दौड़ती और जीन मेरा मजाक उड़ाती। वैसे प्रियल सही थी, उसने मुझे पहले भी वॉर्न किया था, लाइक जब हम लखनऊ जा रहे थे। मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ था जिससे वो लड़की से इनसिक्योर हो गई, लेकिन प्रियल सही साबित हुई। तो अब क्या सोचा है आगे? आई मीन लड़की से कैसे निपटोगे? निक ने कहा, मैंने कहा ना वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, उसके बाबा ने डॉक्टर को बुलाया तो है, देखते हैं कि डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं। उन्होंने बताया था मुझे कि लड़की की ये हालत अब नहीं हुई, वो पहले से ही काफ़ी बीमार थी। एमा उदास होकर बोली, काश प्रियल यहाँ होती तो सब सच जान पाती और दोनों में सब सही हो जाता। चलो अब कोई मेडिसिन ले लेना, पता है ना हमारे पास बीमार होने का ऑप्शन नहीं है, सीक्रेट एजेंसी ऑफिस भी जाना है, कल की रात प्रोजेक्ट जन्नत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले कि निक एमा की बात का कोई जवाब देता, उसे फिर से वॉमिटिंग शुरू हो गई और वो दौड़कर बाथरूम में चला गया। एमा को उसकी हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी। कुछ देर बाद निक और एमा कुछ सूटकेस के साथ सीक्रेट एजेंसी ऑफिस में थे। इन शॉपिंग बैग में बड़ी ही चालाकी से कुछ फाइलों और सबूतों को छुपाया गया था ताकि किसी को भी शक ना हो। निक और एमा कल दोपहर से सीक्रेट एजेंसी ऑफिस में थे। वहां पर मौजूद टीम ने एक पल भी आराम नहीं किया, आखिरकार उनकी इतने दिनों की मेहनत आज रंग लाने वाली थी। कुछ ही देर में जन्नत बाजार पर रेड पड़ने वाली थी। भले ही वे लोग वहां नहीं जा सकते थे, लेकिन वहां की पल पल की खबर उन्हें मिल रही थी। हमेशा की तरह तय समय पर जन्नत बाजार सजा था और वहां पर सभी लड़कियां मौजूद थीं। इस वक्त जन्नत बाजार की सभी लड़कियों का वहां मौजूद होना जरूरी होता था, फिर वे किसी भी उम्र की क्यों ना हो। महफिल खत्म होने के बाद अलग अलग तरह के व्यक्ति उन्हें चुनकर अपने साथ लेकर जाते थे। जन्नत बाजार में अब जन्नत के बजाय रौनक डांस करने लगी थी। सब कुछ हमेशा की तरह चल रहा था, लेकिन सुनहरी और रूपाली इस बात से पूर्णतया अनजान थीं कि आज उनके ग्राहकों के रूप में कोई और नहीं, बिल्कुल पुलिस के आदमी सिविल ड्रेस में आए थे। रौनक का डांस खत्म होने के बाद हमेशा की तरह सुनहरी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अब जिसको जो लड़की पसंद है उस हिसाब से चुनकर उसे अपने साथ ले जाइए, लड़की की कीमत उसके हाथ पर लिखी मिल जाएगी। रूपाली ने कहा, चलो चलो लड़कियों जल्दी करो और सारी एक लाइन में लग जाओ, सब आ गई है ना यहाँ पर, कोई रह तो नहीं गई। फिर सुनहरी ने अपने बाउंसर से कहा, जाकर जन्नत बाजार के दरवाजे बंद कर दो ताकि कोई भी बिना पैसे दिए यहाँ से ना जा सके। सुनहरी का आदेश पाते ही बाउंसर्स बाहर चले गए और उन्होंने जन्नत बाजार के दरवाजे बंद कर दिए थे। सभी ऑफिसर्स के लिए कोई भी एक्शन लेने का यही सही वक्त था, क्योंकि सब दरवाजे बंद होने की वजह से कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। उन लोगों के साथ कुछ लेडी ऑफिसर्स भी थीं जिन्होंने दाढ़ी मूछ लगा रखी थी ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। उन्होंने जल्दी से अपनी दाढ़ी मूछ निकालकर अपनी बंदूक रूपाली और सुनहरी पर तान दी थी। बाकी के ऑफिसर्स भी उन्हें घेर कर खड़े हो गए ताकि वहां से कोई भाग ना सके। रूपाली घबराते हुए बोली, अरे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, कौन हो तुम लोग? सुनहरी ने कहा, देखो यहाँ पर हथियार लेकर आने की अनुमति नहीं है, ये तो प्यार मोहब्बत बांटने की जगह है, आप भी मजे लूटो और औरों को भी लूटने दो। मोहिता, जो कि एक सीनियर ऑफिसर थी, ने कहा, हाँ मजे तो अब तुम जेल में जाकर लूटना, बड़े लंबे जाने वाले हो सब के सब। सुधा, एक दूसरी ऑफिसर ने कहा, यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ मौजूद लोगों को पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं, इनसे अब वहीं पर चलकर पूछताछ होगी। हाँ, लेकिन हमारी रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर और भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर इन लोगों ने बच्चों और किडनैप हुई छोटी लड़कियों को छुपा रखा होगा। तुम लोग इन्हें लेकर जाओ, तब तक दूसरी टीम आती ही होगी और उनके आने के बाद हम यहाँ की पूरी छानबीन कर लेंगे, एक इंस्पेक्टर ने कहा। सुनहरी और रूपाली सहित वहाँ पर मौजूद हर एक लड़की को एक बार के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहाँ पर उन सबके बयान होने थे। साथ ही कुछ एनजीओ और अनाथ आश्रम जैसे संस्थानों से संपर्क किया गया ताकि इन लोगों की मदद की जा सके। जन्नत बाजार से और भी इलीगल चीजें जैसे कि हथियार और ड्रग्स भी बरामद किए गए। वहाँ मौजूद छोटे बच्चों को भी निकाला गया। जन्नत बाजार पर रेड करने के बाद सबने चैन की सांस ली। उन्होंने उन सबके खिलाफ इतने पुख्ता सबूत इकट्ठे कर रखे थे कि उनके बाहर आने का कोई चांस नहीं था। साथ ही जन्नत बाजार के बंद होने से उसके जैसे और भी छोटे मोटे रेड वाइट एरिया एक बार के लिए ठंडे पड़ गए थे। पुलिस को जिन जिन लोगों पर और संस्थानों पर शक था, वहां सब जगह छानबीन का काम शुरू हो गया। प्रिया लखनऊ से सीधा अमृतसर आई थी। पहले तो उसने आरोही के पास जाने का सोचा था, लेकिन उसे मामा मामी से मिले हुए भी बहुत दिन हो गए थे, तो उसने अमृतसर जाने का फैसला लिया। प्रियल एक हफ्ते तक अमृतसर में रुकी और आज वो वहां से आरोही के पास जा रही थी। सोनू मामी ने कहा, क्या प्रियू, तू बस एक हफ्ते के लिए रुकी और वो भी अकेली आई है? मामी, जब मेरा निक के साथ सब सही हो जाएगा तब उन्हें भी ले आऊंगी, प्रियल ने उनके गले लगकर बोला। सोनू ने कहा, हाँ वो भी देख लेंगे, पता नहीं अब कब तुझे छुट्टी मिलेगी, क्या जरूरत थी इतना हिस्की काम चुनने की? दीपक मामा ने कहा, नहीं सोनू, हमारी प्रियू बहुत ही अच्छा काम कर रही है और आज अगर दीदी और जीजा जी जिंदा होते तो उन्हें इस पर नाज होता। एक आम जिंदगी चुनना बहुत ही आसान काम है, लेकिन अपनी जिंदगी खतरे में डालकर दूसरों की जान बचाना, ऐसा करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है और मुझे मेरी प्रियू पर गर्व है।
प्रियल मामा जी के गले लगते हुए बोली, थैंक यू सो मच मामा जी, भले ही आज मम्मी पापा नहीं है, फिर भी आप लोगों ने मुझे सिमरन दीदी जितना ही प्यार दिया है। और मामी, हमारी जॉब में छुट्टी नहीं होती, ये तो पहली बार पता नहीं कैसे मुझे एक महीने की छुट्टी मिल गई, तो सोचा कि एक हफ्ते आपके पास आ जाऊं। सोनू ने प्रियल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत अच्छा किया बेटे, बस अपना ख्याल रखना, कोशिश करेंगे कि जब सिमरन आई हुई होगी तब उसके साथ हम भी तुमसे मिलने आएंगे। प्रियल ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर मुझे भी तो अपने भांजे के साथ खेलने का मौका मिलना चाहिए ना, बहुत दिन हो गए, मैंने तो मंटू को देखा भी नहीं। मामा जी, अब मुझे चलना होगा। हाँ बेटे, हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहो और वही करो जो तुम्हें सही लगे, चल मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ाता हूँ। प्रियल मामा मामी से विदा लेकर आरोही के पास जाने के लिए निकल पड़ी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मुखर्जी निक के घर पर आए हुए थे। जैन और आलिया भी अपनी छुट्टियां बिताकर वापस आ चुके थे। अंकित, रॉन और एम्मा भी वहीं पर मौजूद थे। आज वे लोग जन्नत बाजार के बाद इस मिशन के दूसरे पड़ाव के लिए कोलकाता छोड़कर कहीं और जाने वाले थे। मिस्टर मुखर्जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही हमने आप पर बार बार इस मिशन को ज्वाइन करने का दबाव बनाए रखा, लेकिन हमारा फैसला गलत नहीं था। आपकी लीडरशिप में सिर्फ 3 महीने के अंदर इस मिशन को इसके अंजाम तक पहुँचा दिया। निक ने कहा, हाँ लेकिन पहली सीढ़ी पार करने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए, आप भी जानते हो कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। चलो फाइनली अलविदा कोलकाता, काफी अच्छी जगह थी। बताइए मिस्टर मुखर्जी, अगली उड़ान कहाँ भरनी है? अंकित ने पूछा। निक ने कहा, चलो इसी बहाने इंडिया को और एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाएगा। एम्मा ने कहा, तुम यहाँ इंडिया घूमने नहीं आए, मिशन के लिए आए हो, तो इस पर फोकस करो। जरूरी नहीं कि पूरे टाइम काम ही किया जाए, कई बार घूमना फिरना भी अच्छा होता है, अंकित ने मुस्कुराकर बोला। मिस्टर मुखर्जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा सर आपने, लाइफ में कई बार घूमना भी जरूरी होता है। वैसे तो हमारा अगला पड़ाव मेरठ है, लेकिन टीम चाहती है कि वहां जाने से पहले वहां के बारे में अच्छी तरह पता लगा लिया जाए। वे लोग जन्नत बाजार की तरह खुलेआम काम नहीं करते, वहां सब कुछ चोरी छुपे होता है। बहुत कोशिशों के बाद भी हम उनके बारे में ज्यादा पता नहीं लगा पाए, जितना भी उनके बारे में पता है वो बस इन 2 फाइलों में है। जैन ने कहा, मिस्टर मुखर्जी आप प्रियल को कब तक वापस बुला रहे हैं? सुनहरी और रूपाली भी पकड़ी जा चुकी हैं, अब तो उसे कोई खतरा नहीं उनसे। मिस्टर मुखर्जी ने बताया, हाँ मिसेस शर्मा भी आपको इस मिशन में ज्वाइन करेंगी, लेकिन उससे पहले मिशन से जुड़ी सारी टीम 15 दिन के ब्रेक पर जा रही है। उनसे जुड़े कुछ तार हमें देश के अलग अलग हिस्सों में मिले हैं और सबसे ज्यादा शिमला और लखनऊ से। अंकित ने हैरानी से कहा, शिमला जैसी पीसफुल जगह पर भी ऐसे लोगों के तार जुड़े हो सकते हैं? मिस्टर मुखर्जी, हाँ तो आप अपनी टीम को डिवाइड करके 3 लोग शिमला चले जाइए, तो कुछ लोग लखनऊ। इन 15 दिनों में आप घूम भी लीजिएगा और साथ ही वहां से जुड़ी जानकारी भी हासिल कर लीजिएगा। चलिए अब मुझे इजाजत दीजिए।
मिस्टर मुखर्जी वहां से चले गए। निक सबके लिए फ्लाइट की टिकट बुक कर रहा था। निक ने कहा, तो बोलो कौन कहाँ जाना चाहेगा? आलिया ने कहा, मैं लखनऊ जाऊंगी प्लीज। निक ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम जैन और रॉन के साथ लखनऊ चली जाना। रॉन कल वापस आ जाएगा। मैं और एम्मा अंकित के साथ शिमला चले जाएंगे, और प्लीज वहां जाकर एक बार परी से भी मिल लेना। आलिया ने मुस्कुराकर हामी भरी। जैन ने कहा, चलो पैकिंग भी तो करनी है। वे लोग अपना सामान पैक करके वहां से जा रहे थे। जैन और आलिया लखनऊ के लिए निकल चुके थे, तो वहीं अंकित, एम्मा और निक शिमला के लिए निकल रहे थे। घर लॉक करते समय निक को सामने लड़की के बाबा दिखाई दिए। निक ने उन दोनों से कहा, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। एम्मा ने कहा, उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं एम्मा, उसे एक बार बात कर लेनी चाहिए। हम लोग नीचे हैं, बहुत ज्यादा टाइम मत लेना, अंकित ने कहा और एम्मा के साथ नीचे चला गया। निक वहां से लड़की के बाबा के पास गया और कहा, लड़की अब कैसी है अंकल? चंद्रकांत जी ने कहा, आपने जिस डॉक्टर को सजेस्ट किया था, उसके ट्रीटमेंट के बाद काफी हद तक चीजें बेहतर हो रही हैं। काश ये मैंने बहुत पहले कर दिया होता तो आज। बोलते हुए चंद्रकांत जी भावुक हो गए और उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। निक ने कहा, अभी भी देर नहीं हुई है अंकल, आई विश की लड़की जल्दी से ठीक हो जाए, फिर जैसा वो चाहती है आप उसे लाइफ में वो सभी खुशियां दीजिएगा। चंद्रकांत जी ने निक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, अब मैं समझ सकता हूँ कि कैसे लड़की तुम्हारी तरफ आकर्षित हो गई। निक ने कहा, अब मुझे जाना होगा, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मेरा नंबर है आपके पास, आप कभी भी कॉल कर लीजिएगा। चंद्रकांत जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो बेटा। चंद्रकांत जी ने निक को विदाई दी और उनके दिल से उसके लिए दुआएं ही निकल रही थी। आज उसी की वजह से लड़की की हालत में काफी हद तक सुधार आ रहा था। निक, एम्मा और अंकित कोलकाता से फ्लाइट लेकर हिमाचल के जुबलहट्टे पहुंचे। वहां से एवा उन्हें गाड़ी लेकर लेने आई थी। लगभग एक घंटे बाद वे सभी अंकित के घर पहुंचे। इससे पहले कि वे घर के अंदर जाते, निक बाहर ही रुक गया। अंकित ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ तुझे निक, अंदर क्यों नहीं आ रहा? सॉरी अंकित, पर मैं अंदर नहीं आ सकता, निक ने कहा। एम्मा ने पूछा, क्यों? निक ने कहा, अंकित तेरे घर पर मेरा और प्रियल का रोका हुआ था। तेरा घर देखते ही मुझे वो सारी बात याद आने लगी। प्रियंका जी भी थी हमारे साथ, और अब वो सब सोचकर निक की पलक भीग गई। एवा ने कहा, निक कैसे बच्चों जैसी बात कर रहा है? बीते हुए वक्त को कोई नहीं बदल सकता, होती है तो बस हमारी याद, तो बाकी बात छोड़ो और चल हमारे साथ। निक ने कहा, नहीं मुझे नहीं आना। अंकित ने कहा, तो क्या 15 दिन तू होटल में रहेगा? हम लोग सारा काम सीक्रेटली हैंडल कर रहे हैं, वहां हम कोई भी पहचान सकता है। मैं यहीं कहीं आसपास में पीजी में घर ढूंढ लूंगा, आसपास नहीं तो कहीं भी दूर, लेकिन सॉरी मैं तेरे घर पर नहीं रुक सकता, निक ने अंदर आने से साफ मना कर दिया। अंकित ने कहा, अच्छा बाद में तुझे जो करना है कर लेना, एक बार के लिए तो घर पर चल। अंकित के ज्यादा जोर देने पर निक एक बार उसके साथ अंदर चला गया, लेकिन उसके दिमाग से वो सब बातें जा ही नहीं रही थी जो उसकी और प्रियल के रोके की रसम से जुड़ी हुई थी। वे सब अच्छे से जानते थे कि निक बहुत इमोशनल था, अगर ऐसे ही वो सारी बातों को याद करके डिस्टर्ब रहेगा तो काम बिल्कुल नहीं कर पाएगा। रात के समय एम्मा, एवा और निक डिनर कर रहे थे, जबकि अंकित वहां मौजूद नहीं था। निक अभी भी परेशान था कि तभी अंकित बाहर से आया। निक ने कहा, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, इससे अच्छा रॉन यहाँ आ जाता और मैं लखनऊ चला जाता, वहां परी से भी मिल लेता। अच्छा अब ज्यादा परेशान मत हो, मैंने तुम्हारे लिए घर ढूंढ लिया है। सॉरी क्योंकि घर यहाँ से काफी दूर है, पर आउट ऑफ एरिया में होने की वजह से तुम्हें काफी सुकून मिलेगा, अंकित ने बताया। क्या मैं अभी वहां पर जा सकता हूँ प्लीज? निक ने पूछा। अंकित ने कहा, हाँ इसीलिए आया था कि हम वहां चलना चाहिए, ज्यादा देर हो जाएगी तो वो आंटी दरवाजा बंद कर लेगी। एवा ने कहा, कई बार तुम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते निक। एम्मा ने कहा, तुम कई बार का बोल रही हो, मुझे ये कभी भी समझ नहीं आया। चल अब तूने सोच लिया है तो तेरी मर्जी।
निक उन सबको बाय बोलकर अंकित के साथ शहर से थोड़ा दूर बने एक छोटे से बंगले में पहुंचा। बंगले की मालकिन एक 55 साल की औरत थी जिसका नाम मारिया था। मारिया आंटी की शादी नहीं हुई थी और वो उस घर में अकेले ही रहती थीं। अंकित और निक वहां पहुंचे तो वो दरवाजे पर उनका इंतजार कर रही थीं। निक ने मुस्कुराकर ग्रीट किया, हेलो आंटी। मारिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, अच्छा तो ये है वो जो यहाँ रहेंगे, चलिए कोई बात नहीं, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक बात पहले ही क्लियर कर देती हूँ, रात को 10 बजे के बाद मैं घर का दरवाज़ा बंद कर लूँगी और यहाँ पर आप किसी लड़की को भी नहीं ला सकेंगे, आई हेट कपल्स। अंकित ने कहा, आंटी ये सिंगल है। निक ने कहा, ओके लेकिन मुझे भी पूरी प्राइवेसी चाहिए होगी, आपके अलावा इस घर में कोई और तो नहीं रहता ना? मारिया ने अटकते हुए कहा, नहीं, मेरे घर में दो फ्लोर बने हैं तो आप ऊपर के फ्लोर में रह सकते हैं। सीढ़ियाँ यहाँ बाहर के साइड में ही हैं, आपको घर के अंदर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, आप घर के नीचे के फ्लोर पर कदम भी नहीं रखेंगे। ऊपर रूम से किचन बाथरूम की सारी फैसिलिटी है। निक ने कहा, ओके ओके बाय अंकित, फिर कल मिलते हैं। अंकित वहाँ से अपने घर की तरफ जा चुका था तो निक भी अपना सामान लेकर ऊपर रूम में शिफ्ट हो चुका था। निक को वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि चारों तरफ हरियाली थी और एक अलग ही सुकून था। निक की रात काफ़ी अच्छे से गुजरी। सुबह वो उठा तो नीचे के फ्लोर पर किसी के दौड़ने और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। निक ने गुस्से में कहा, इतनी सुबह कौन हो सकता है यार, नींद ख़राब कर दी। मारिया आंटी ने झूठ बोला कि यहाँ कोई नहीं रहता, इसे तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। निक गुस्से में नीचे के फ्लोर पर गया, लेकिन मारिया आंटी ने उसे अंदर आने से मना किया था तो वो हॉल के बाहर दरवाजे पर ही खड़ा हो गया। मारिया ने चिल्लाते हुए कहा, इतने दिन तक मैं सुकून से रह रही थी, लेकिन पता नहीं तुम लोग कहाँ से आ गए। देखो, मैं पहले ही बोल रही हूँ, यहाँ पर इतना शोर शराबा नहीं चलेगा, और वैसे भी अब मैंने नया किराएदार ढूंढ लिया है, तो तुम लोग निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें दो दिन का टाइम दे रही हूँ। वहाँ मौजूद लोगों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो उसने गुस्से में और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे तुम लोग मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे। निक दरवाजे पर खड़े होकर अंदर की तरफ देख रहा था। वहाँ जो चल रहा था उसे देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं और सिर चकराने लगा। उसने सहारे के लिए पास की दीवार को पकड़ लिया। उसे वो सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। निक ने नम आंखों से कहा, क्या किया तुमने मेरे साथ ऐसा, मैं